ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नारी शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में उदाहरण प्रस्तुत कर विकसित भारत के संकल्प में सक्रिय रूप से शामिल हो रही हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार ने पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से नारी सम्मान सुनिश्चित करना, जनधन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर पर नारी सशक्तिकरण शामिल हैं। श्री मोदी ने उज्ज्वला योजना को पूर्ण बताते हुए कहा कि इससे कई घरों की रसोई धुआं मुक्त हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि मुद्रा ऋण से लाखों महिलाओं का उद्यमी बनने का सपना पूरा हुआ है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अग्रिम सैन्य चौकियों पर तैनात सैन्य बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने वहां सैनिकों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने सैनिकों से परिचालन तैयारियों में उच्च मानकों को बनाए रखने और निरंतर सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल द्विवेदी ने ज्योतिर्मठ स्थित सामुदायिक रेडियो स्टेशन आईबेक्स तराना 88.4 FM का भी उद्घाटन किया। इस पर शिक्षा, पर्यावरण, मौसम, मनोरंजन, रोजगार, आपदा तैयारी, पर्यटन, स्वास्थ्य और पारंपरिक कलाओं से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। थल सेना अध्यक्ष ने इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुछ पूर्व सैनिकों को वेटरन्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने तमिलनाडु में डीएमके सरकार पर जनविरोधी नीतियों में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मदुरई में पार्टी की बैठक में डीएमके पर 39,775 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। श्री शाह ने कहा कि डीएमके सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम में अपराध करने वालों को सबक सिखाया गया है।
मैं तमिलनाडु की जनता का इसलिए भी आभार करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी वीर सेना और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जो तिरंगा यात्रा है तमिलनाडु में निकली है वो देश के किसी भी हिस्से से कम नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद कल दिल्ली पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के भारत के कड़े संदेश को आगे बढ़ाया। यात्रा से लौटने के बाद श्री रविशंकर ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर यूरोप भारत के साथ खड़ा है।
हर जगह संसद के वरिष्ठ लोग, मंत्रीगण, थिंक टैंक, मीडिया और भारतीय कम्युनिटी से बातचीत हुई। भारत के प्रति पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है और सबों ने कंडेम किया।
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने देश के अनुकूल वातावरण, प्रचुर संसाधनों और उत्साही युवाओं का हवाला दिया। कर्नाटक के धारवाड़ में कल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन चुका है। श्री जोशी ने बताया कि देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत आज उद्योग, नौकरी, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन और बिजली क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन रहा है। श्री जोशी ने कहा कि भारतीय प्रतिभाओं की जर्मनी समेत दुनिया भर में मांग बढ़ी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने समुद्री संसाधनों पर आधारित नीली अर्थव्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। मोनाको में कल समुद्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने समुद्री स्थानिक नियोजन MSP को ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख उपकरण के रूप में अपनाने की भारत की प्रगति पर बल दिया। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और इटली के जैनिक सिनर के बीच खिताबी मुकाबला जारी है। पहले दो सेट हारने के बाद अल्कराज ने जोरदार वापसी की। आखिरी रिपोर्ट आने तक उन्होंने तीसरा और चौथा सेट जीत लिया। पांचवा सेट अभी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।